वासुदेवाय ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 और श्लोक नंबर 28। इस अध्याय का नाम है पार्वती जी के द्वारा राजा चित्रकेतु को श्राप। प्रसंग इस प्रकार का है कि राजा चित्रकेतु इससे पूर्व चरित्र में वृत्रासुर की स्थिति में उन्होंने जब प्रार्थना किया तो पिछले वाला अध्याय समाप्त करते हुए वो भगवान शंकरषण की स्तुति करके वो भी भगवान शंकरषण के धाम में चले जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लिए, अर्थात उन्हें भगवान शंकरषण की कृपा मिल गई और भगवान शंकरषण जिस दिशा को गए थे उसी दिशा में ये भी चले गए। अर्थात जब वृत्रासुर के शरीर की अंत्येष्टि हुई तब उन्हें भगवान शंकरषण की धाम की प्राप्ति हुई और राजा चित्रकेतु उस दिशा को चले जिस दिशा में भगवान शंकरषण उनको संकेत देकर के अपने को अंतर ध्यान कर लिए। तो इस अध्याय में जो अध्याय चल रहा है, इस अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं राजा चित्रकेतु जब इस धाम को प्राप्त किए तो उन धामों की सुख सुविधा भगवान शंकरषण की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई और जब कृपा की प्राप्ति हुई तो भक्ति करने के बाद या कठिन तपस्या करने के बाद लगभग हर भक्तों के जीवन में भगवत कृपा की जब प्राप्ति होती है तो उन्हें सुखद स्थिति की अनुभूति होती है। भगवान भक्तों की इच्छा को जानते हैं, इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें सुख संपत्ति और राज्य का सुख प्रदान करते हैं। तो राजा चित्रकेतु को जैसे ही सुखद स्थिति की प्राप्ति हुई, भगवान शंकरषण की कृपा प्राप्त हुई, तो वो विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे और सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर इन सब की स्त्रियां और इन सब जातियों के द्वारा राजा चित्रकेतु का गुणगान किया जा रहा था। इस अध्याय में बताया गया कि करोड़ों वर्ष तक चित्रकेतु इस राज्य की सुखद स्थिति का उन्होंने विहार किया और विहार करने के संदर्भ में ही उन्होंने एक विचित्र स्थिति देखा जहां ब्रह्मा नारद सनत कुमार भृगु ऋषि सारे बड़े बड़े ऋषि उपस्थित थे और उस सभा में राजा चित्रकेतु ने यह स्थिति देखा कि भगवान शंकर इन बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा में अपने जांघ के ऊपर पार्वती को बिठाए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। उनको यह गजब सी स्थिति लगी, यह कौन सा परंपरा चालू हुआ, क्योंकि इसी अध्याय के अंदर प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जो एक शुद्ध भक्त होता है और भगवान शिव की स्थिति को यही दोनों आपस में परस्पर जानते थे और कोई नहीं जानता था कि इन दोनों की स्थिति क्या है। मेरे गुरु महाराज इस प्रसंग में कहा करते हैं इस कथा के संदर्भ में कि खग जाने खगई का भाषा, साधु ही भगवान के भाषा को समझ सकता है और भगवान अपने भक्तों की भाषा को समझ सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव इन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सभा में पार्वती जी को अपने गोद में बिठाए हुए हैं और कथा सुना रहे हैं। तो उन्हें यह विचित्र सी स्थिति लगी और उन्होंने निर्भीकता के साथ जाकर के उस सभा में और निर्भय होकर के भगवान शिव की इस स्थिति के विषय में उपहास करते हुए बोले। और प्रसंग वही चल रहा है, चित्रकेतु महाराज 7 श्लोक बोले हैं। विचित्र स्थिति का उपहास करते हुए उन्होंने बोला, तब इस प्रकार की स्थिति को सारे ऋषि मुनि जो उपस्थित है वो तो कुछ नहीं जवाब दिए और भगवान शिव मनी मन मुस्का रहे थे। वो समझते थे कि ये किस भाव से यह मेरा भक्त बोल रहा है। लेकिन पार्वती जी इस बात को नहीं सहन कर पाए, उन्होंने श्राप दिया कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और क्या भगवान शिव पर दोषारोपण करने वाला एक यही व्यक्ति आ गया? इन ऋषियों से ज्यादा ज्ञानी है क्या? एक शब्द आया है, निर्जित आत्म माया, पिछले वाले श्लोक में कि चित्रकेतु इस भाव से बोल रहे थे कि भगवान शिव अजितेंद्रिय हैं क्या? आज क्या हो गए इनको, ये इस प्रकार की स्थिति में क्यों ऐसे कर रहे हैं? लेकिन इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक के संदर्भ में, इसी अध्याय के श्लोक के संदर्भ में टीका लिखते हैं कि देव्या सापेन नृतत्वात्, यह भगवान का विधान था। भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु को साप मिले और वो जल्दी मेरे पास आए। 21 इसी अध्याय के 21वें श्लोक के अंदर एक शब्द आया है कि हम लोग क्यों इस संसार में आकर के भ्रमित हो जाते हैं। तो उस 21 श्लोक नंबर 21 में आया है कि आत्म माया, भगवान की माया ही इस संसार के सारे जीवों को देह संजोगात, देह का संजोग करा देती है। और जो आत्म माया शक्ति है वो विमोहन कर देती है जीवों को और वो अपनी असली स्थिति को नहीं समझ पाते, वो फंस जाते। हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले अध्याय के अंदर, लास्ट वाले श्लोक में आया है, इससे पिछले वाले अध्याय के पिछले श्लोक में वहां बताते हैं कि जब तक जीव आत्मा और परम आत्मा का विश्लेषण नहीं जान लेता है तब तक वह इस संसार में बार बार फंसेगा। जब आत्मा और परमात्मा के विश्लेषण को ठीक से समझ जाएगा तो तो उस जीव के लिए, उस देहधारी के लिए इस जगत में सुख हानि लाभ जय पराजय मोक्ष बंधन कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यह भी बात है कि जब भगवान की आत्माया शक्ति जब इस स्थिति में जीव को आने दे तब तो इसलिए जो श्लोक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद वाले श्लोक में आएगा कि आत्म जीव केवल दो प्रकार से बंधता है। एक तो भगवान लीला की दृष्टि से उसको बांधते हैं और दूसरा देह संजोगात उसको देह दे करके देही उपज करके उसमें बांध देते हैं। देह देहिच देह और देह से उत्पन्न होने वाले यही दो बांधते हैं, या तो भगवान उनको फंसाते हैं या भगवान उनको फंसा करके भी आत्मलीला अपनी लीला का वर्णन कराना चाहते हैं। तो आज इस श्लोक में खास करके यह बताया गया है, आज के श्लोक में प्रसंग वहां पहुंचा है, यह बताया जा चुका है, श्राप मिल चुका है चित्रकेतु जी को और चित्रकेतु महाराज श्राप से बचने के लिए पार्वती जी को खुश करने का और शिव को खुश करने का 7-8 श्लोक वर्णन किए हैं। तो उन्होंने पहले ही श्लोक में कह दिया कि हे पार्वती यह मत सोचना कि मैं जो आपको प्रसन्न करने का जो वाक्य बोल रहा हूं अपने श्राप से बचने के लिए नहीं, मैं यह इसलिए बोल रहा हूं अब मुझे ग्लानि होती है आत्म अनुभूति होती है कि थोड़ी मेरी कमी है, मैं उस अपराध से बचने के लिए न कि आपके श्राप से मुक्त होने के लिए मैं यह श्लोक बोल रहा हूं और इस प्रकार का प्रार्थना कर रहा हूं। जब श्राप मिल गया चित्रकेतु जी उस श्राप को स्वीकार करके विद्याधरों के साथ चल दिए तो भगवान शिव अपने गुरु भाइयों कह लीजिए, क्योंकि एक भक्त का एक भक्त मित्र ही होता है, गुरु भाई ही होता है, क्योंकि परम वैष्णव के रूप में भगवान शिव को जाना जाता है। तो शिव जी भक्तों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि पार्वती देखी आपने, आपने श्राप तो दे दिया लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त होने के बावजूद उन्होंने बदले की भावना से कुछ आपको कहा नहीं और श्राप को स्वीकार करके उछल दिए। और शुरू में भी आपने देखा कि बिल्कुल निर्भीक भावना से आकर के इतने बड़े बड़े सभाओं इतने बड़े बड़े ऋषियों के बीच में उन्होंने मेरी आत्म अवहेलना किया। तो आपको कुछ पता चला? तो पार्वती जी इस संदर्भ में बोली हैं भगवान शिव से कि हां मैंने यह अनुभव कर ली, यह देख लिया भगवान के शुद्ध भक्तों की स्थिति क्या होती है, क्योंकि प्रकट रूप में मैंने उन्हें श्राप दिया और राजा हैं, एक शासक हैं, वो चाहते तो कुछ कह सकते थे, जवाब मुझे दे सकते थे, बदले में भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्ति से अपने क्षमा से उन्होंने मुझे जीत लिया अर्थात मुझे हरा दिया। और भगवान शिव ने भी यही बात कहा है कि अपने भगवत्ता के बल पर अपने शुद्ध भक्ति की शुद्धता की स्थिति के बल पे वो आपसे जीत गए अर्थात आपसे उत्कृष्ट स्थिति में। तब भगवान शिव इस श्लोक को बोलते हैं इस श्लोक में खास करके भगवान के भक्तों की स्थिति बताई गई है। हम लोग तो श्लोक आवृत्ति एक दो आदमी करेंगे और हम अपनी स्थिति समझने का प्रयास करें, क्योंकि तथाकथित हम लोग भी अपने को भक्त कहते हैं। जब तक कसौटी पर कसा नहीं जाता तब तक पता नहीं चलती कि हमारी स्थिति क्या है। हम लोग तो तथाकथित भक्त हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद यह स्थिति आ सकती है। नारायण परा सर्वे न उतश्च विद्यते स्वर्ग अपवर्ग नरकेशो अपे तुल्य अर्थ दर्शिनः। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यते स्वर्गा अपवर्गा नरकेशो अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यते स्वर्गाय उपवर्ग नरकेशो अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। नारायण परा, जो केवल नारायण की सेवा में रुचि रखते हैं शुद्ध भक्त, सर्वे समस्त न नहीं कुतश्चन कहीं भी विद्यते डरते हैं स्वर्ग स्वर्गलोक अपवर्ग मुक्ति नरकेशो तथा नरक में अपि भी तुल्य समान अर्थ महत्व दर्शिनः देखने वाले। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। मैं अनुवाद को पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे दोहराइएगा। सदैव श्री भगवान नारायण की सेवा में रत रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं रहते। उनके लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान हैं, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। कृपा करके इस अनुवाद को बोलिए। सदैव श्री भगवान नारायण की सेवा में रत रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। हरे कृष्णा। पहले इस श्लोक के शब्दार्थ पर, शब्दों पर हम लोग विचार करें। नारायण पराह सर्वे, न शब्द दोनों तरफ जुड़ सकता है कि भगवान के भक्तों का स्वभाव ऐसा होता है कि नारायण की सेवा से न परह उनको और किसी की सेवा करने में रुचि नहीं होती, क्योंकि उनकी बुद्धि विभ्रमित नहीं होती, क्योंकि एकाकी भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए पहला स्वभाव भगवान श्री यहां बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो नारायण परा होते हैं। नारायण से अलग उनकी बुद्धि नहीं जाती, अर्थात उन भगवान की भक्ति से और भगवान के भक्तों की संगति से उनकी बुद्धि दूर नहीं जाती। और यही सबसे बड़ी योग्यता है भक्तों की कि अपने बुद्धि को एकाकी एकाएक शरण में लगाना चाहिए, अन्यथा जितना ही हम विभ्रमित करेंगे अपने मन में और बुद्धि को, उतना ही हमारी जो भक्ति की भावना है वो डिवाइड होती जाएगी। इसलिए एकाकी भक्ति करने के लिए कृष्णायिक शरण, केवल कृष्ण की शरणागति की जरूरत है। एकाकी भक्ति चाहे किसी भी रूप की, राधा कृष्ण के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के, जुगल स्वरूप के, तब अपनी बुद्धि एक ठिकाने पर लगी रहेगी। परह मतलब अपनी बुद्धि को कृष्ण की स्थिति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और जब हमारी एकाकी भक्ति रहेगी तो हमारा पूरा पूरा भगवान पर भरोसा रहेगा कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण करिबे विश्वास। अगर हमारी पूरी पूरी भरोसा कृष्ण पर है तो वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। नहीं, जितना ही हम भ्रमित होंगे उतना ही हमारी बुद्धि और हमारी जो निर्भयता की स्थिति है वो खंडित होते जाएगी। इसलिए भगवान शिव यहां भक्तों की उस स्थिति को बता रहे हैं कि जो नारायण पराभक्त होते हैं वो बिल्कुल निर्भीक होते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। और ऐसे ही हमारे फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, सिद्धांत बोलने में प्रभुपाद कहीं भी डरे नहीं, क्योंकि इनको एकमात्र भरोसा था कृष्ण। अगर इस प्रकार की एकाकी विश्वास अगर भगवान के ऊपर हम लोग कर लेते हैं तो निश्चित हमें किसी भी सृष्टि में आए हुए किसी भी जीव से डर नहीं लगेगा। नहीं, अगर हमारी बुद्धि भ्रमित है और हमारी एकाकी भक्ति नहीं है, एक पर भरोसा नहीं है, तब तो शायद कोई हमारा रक्षा नहीं कर सकता। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, संदिग्ध ही हतो जप। भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि अगर जिसकी बुद्धि संदिग्ध है, शंका की स्थिति में है कि पता नहीं मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं यह मंत्र हमारी रक्षा करेगा या नहीं, संदेह है, तो शायद वह अटक जाएगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास नहीं है। और व्यग्र चीतो हतो जप, और जप करते समय हमारी जो चेतना है वो व्यग्र की स्थिति में है, तो शायद हम उस मंत्र का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन पूरी पूरी भरोसा होती है इस महामंत्र पर और इस नाम पे, तो हम कहीं भी रहेंगे निर्भय की स्थिति में रहेंगे। जब निर्भय हो जाएगा तो उसका स्वभाव किस प्रकार का हो जाएगा, तो किसी भी परिस्थिति में वो कहीं भी रहेगा, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, या किसी भी परिस्थिति में रहे, वो केवल एकमात्र अपने प्रभु की आराधना करेगा और उसी में अपने आराध्य देव की कृपा की अनुभूति करेगा। यह नहीं कि भगवान को कोसना शुरू कर देगा कि पता नहीं हमने इतने दिन तक माला जप किया और भगवान ने मेरे साथ ये किया। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की स्थिति नहीं है। जहां भी उसकी स्थिति जाती है वो हर जगह से भगवान की कृपा की अनुभूति करता है। इसलिए भगवान शिव अपने मुख से भगवान के भक्तों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जो हम लोग यह श्लोक पढ़ रहे हैं, इस प्रकार का श्लोक एक भागवत के दशम स्कंद में भी आया है। उसमें एक शब्द या दो शब्द का फर्क है कि किसी से भी तुलना कर लीजिए, लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसको भगवान के विपरीत स्थिति में उसकी बुद्धि नहीं जाती। हर जगह जहां भी वो जाएगा वहां वह कृष्ण को स्मरण करेगा। उसकी एक ही अर्थ सिद्धि है कि वह भगवान को अनवरत स्मरण करेगा। यह नहीं कि भगवान ने मैं भजन किया तो भगवान ने मुझे यहां भेज दिया, हमें ये दे दिया, हमें वो दे दिया। कहीं भी गए, कहीं भी जाएगा, किसी भी परिस्थिति में रहेगा, वो भगवान का स्मरण करेगा। एक श्लोक आया है भागवत के 10 स्कंद के 14वें अध्याय में कि किसी भी परिस्थिति में वो भगवान की कृपा का ही अवलोकन करता है, क्योंकि वो भगवान कि बताई हुई स्थिति से विपरीत दिशा में जाने का प्रयास नहीं करता। उसका एक ही अर्थ सिद्धि है कि वह भगवान की कृपा को हर जगह देखता है, इसलिए वह निर्भय विचरण करता है। कहीं भी अगर हम भगवान की कृपा को देखने का कहीं प्रयास नहीं करते हैं तो हम डर की स्थिति में रहेंगे। पिछले श्लोकों में हम लोग पढ़ चुके हैं वृत्रासुर की स्थिति कि वृत्रासुर असुर योनि में थे, लेकिन अपने मना स्थिति को उन्होंने कितना एकाग्र रखा भगवान के चरणों में। उन्होंने कहा है चतुश्लोकी भागवतम के, जो वृत्रासुर की चतुश्लोकी भागवत के रूप में वो श्लोक आता है सब, कि अहम हरिरतो पादैक मूलम दासा उदासो भवितास्म भूय मन स्मरेता स्वपते गुणाश्च गृणीत वाक कर्म करोति काय। कि जब मैं भगवान का दास बन चुका हूं तो केवल मन से, शरीर से और वाणी से केवल आपकी कृपा का अवलोकन कर रहा हूं। और हे प्रभु, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन, मेरी वाणी और मेरा शरीर आपकी ही कृपा के अवलंबन पर निर्भर रहे। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि ना नाग परिश्रम न चपार में श्रम न योग सिद्धि पुनर्भवमा, मुझे किसी भी चीज की इच्छा नहीं। हमें नरक मिले, स्वर्ग मिले, सिद्धि मिले, कोई भी चीज हमें पाने की इच्छा नहीं। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय हो। फिर असहाय की स्थिति में उन्होंने एक श्लोक कहा कि अजात पक्षा युवा तरह खगा अस्तन जत वत्स रहा सुधारता प्रियम प्रियेय विशता विशस्णम मनो अरविंदा क्षत्रिदीक्षते त्वम। अपने उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि हे प्रभु, कि मेरी आंखें केवल दृश्यताम त्वाम आपको केवल देखती रहे, न कि और किसी को। यह भगवान के एक शुद्ध भक्त की स्थिति होती है। कि अपनी मनोकामना इस प्रकार का करता है कि दृश्यते त्वाम, मैं केवल आपको देखूं, जहां मेरी आंखें जाएं आपको ही देखता रहूं। हे अरविंद, आपकी कमल नयन आंखों का मैं दर्शन करते रहा हूं, दर्शन करते रहूं, उन्हीं आंखों को देखता रहूं। क्योंकि मैं असहाय हूं, उदाहरण उन्होंने तीन तीन उदाहरण दिया कि अजात पक्षा जैसे अभी अभी का पैदा किया हुआ पक्षी का बच्चा, अजात जिसके पंख अभी नहीं आए हैं, जो उड़ नहीं सकते हैं, जो असमर्थ हैं, वो अपने मां का बाट देखते रहते हैं कि कब मेरी मां आएगी और मुझे अपने चोंच से मुझे कुछ खिलाएगी। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे गाय का बछड़ा अस्तन्य क्षुधार्ता, दूध पीने की इच्छा रखने वाला गाय का बछड़ा अपने मां का बाट देखते रहता है और आवाज लगाते रहता है कि मेरी मां आएगी तो मुझे दूध पिलाएगी। तीसरा उदाहरण देते हैं कि प्रियम प्रियेय विशता विशेषणम, किसी भी प्रिया का प्रिय उससे दूर है और बहुत दिनों के बाद घर लौट रहे हैं, तो उनसे प्यार की जो स्थितियां होती हैं उसको पूरा करने के लिए वो इंतजार करती है। वही स्थिति है भगवान, मुझे वही स्थिति प्रदान करो, वही एकाकी स्थिति मुझको दो कि दिदृक्षते त्वाम, उसी दृष्टि में मैं आपको देखता रहूं, मेरी आंखें केवल आप पर टिकी रहें कि मैं और किसी को न देख पाऊं। भगवान के शुद्ध भक्तों की स्थिति इस प्रकार की है, केवल भगवान को देखने की, सुनने की, उनकी सेवा करने की इच्छा उनके अंदर होता है। इसलिए उनके लिए शब्द आया है नारायण परा, कि और कोई उनका नहीं है, इसीलिए तो उनको भगवान का भक्त कहा जाता है। जिसका हम हो गए जाकी जासना ताही की उपासना, जिसकी चाह करने की, जिसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे हृदय में है, उसी को प्राप्त करना है, यह हमारे दृढ़ निश्चयता है। यही नहीं कि हम हिलते डुलते रहे, जब यह स्थिति आएगी तब हम निडर बनेंगे। किसी के समक्ष भगवान के विषय में जो सिद्धांत है उसको पेश करने में हमें डरेंगे नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रचार प्रचार में तो कहा करते थे, लेकिन हम लोग उस प्रचार शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते। प्रचार करने का अर्थ है कि पहले तुम पढ़ो, समझो, तब उस बात को किसी के समक्ष प्रकट कर सकते हो। प्रचार का अर्थ यह नहीं है कि बस आए और बैग उठाए और चल दिए बाहर। प्रचार का अर्थ है कि भगवान के विषय में हम कुछ सुन लें, जान लें, पढ़ लें, तब उस बात को हम किसी के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं। अपनी योग्यता को हम लोग समझें कि हमारी स्थिति क्या है। जब अगर हम ठीक से भक्ति करेंगे तो हम किस स्थिति को प्राप्त करेंगे, अपने आप हम इसका अनुभव कर सकते हैं। एक ही दर अपने अर्थ सिद्धि की एक ही लालसा रखनी चाहिए कि हम भगवान का दर्शन करें, उनकी कही हुई वाक्यों के पथ पे चले, भक्ति की बताए हुई मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके उसी दिशा में बढ़े, तब हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी योनि के जीव से हम निडर बने रहेंगे। क्योंकि भयावह स्थिति तब आती है जब हमें किसी पर भरोसा नहीं है। एक पति के ऊपर एक सती पत्नी का पूरा भरोसा होता है, उसी प्रकार भागवत का यह उदाहरण है, यह कोई मैं अपने मन से उदाहरण नहीं दे रहा हूं, कई बार यह उदाहरण आया है कि जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री का अपने पति के ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि अवश्य हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे और हमारी सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करेंगे, उसी प्रकार एक जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसका पूरा पूरा भरोसा होता है भगवान के ऊपर कि सब प्रकार की सारी हमारी इच्छा, चाहे हम जिस प्रकार की इच्छा कर रहे हैं वही पूरा करेंगे। लेकिन यह समझना चाहिए कि भगवान सब कुछ देने में समर्थ है लेकिन विचार करके देते हैं। कृष्ण की भक्ति की एक विशेषता यही है कि वो अपने भक्तों को विचार करके देते हैं, देवताओं की तरह बिना सोचे समझे कोई वरदान नहीं दे देते, जिससे उस भक्त के जीवन में और उद्विग्नता पैदा हो। अब इस श्लोक के संदर्भ में प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या लिखते हैं, हम लोग इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करें। प्रभुपाद की भाषा को अगर हम समझ जाते हैं तो इन सब श्लोकों को समझना आसान हो जाता है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की, कि यह स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न उठाते हैं प्रभुपाद अपने तरफ से, यह स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं, तो अतः इस श्लोक में बताया गया है, सुनिए प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते हैं, कि अतः इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त लोग नारायण पर होते हैं, नारायण पर ही एकमात्र निर्भर होते हैं, उनका और कोई भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, इसीलिए इतने महान होते हैं, क्योंकि उनका भरोसा केवल भगवान के ऊपर होता है, अपने इष्ट देव के ऊपर होता है। वे जीवन की विफलताओं की परवाह नहीं करते, क्योंकि नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई। चाहे जिस स्थिति में हमें गुजरना पड़े, गुरु ने जो आदेश दिया है भगवत प्राप्ति के, उनको आसान समझ करके, कितना भी कठिनाई हो उसको आसान समझ करके उस पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए, तब हम भगवान के भक्त बन पाते हैं, महान बन पाते हैं, तब हम उस शब्द को हासिल करते हैं महात्मा, महान आत्मा बनते हैं। बड़े आसान तरीके से हम लोग किसी को कहते हैं क्या महात्मा, लेकिन उस शब्द के अर्थ को हासिल करने का भी प्रयास करें, उस योग्यता को। उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में, वे केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं। भगवान को तो पता है कि हम लोग भक्ति किस लिए कर रहे हैं, तो फिर उनसे मांगने की क्या, मांगने की अभिलाषा क्या हम लोग करते हैं। अरे जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी इच्छा को तो भगवान जानते ही है, तो मांगना क्या है, फिर भी मांगना चाहिए। क्योंकि अगर कोई संतान अपने पिता से अगर कुछ नहीं कहे तो पिता यह नहीं समझ पाएगा कि मेरी संतान का कितना मुझसे प्रेम है। अगर कोई संतान पिता से बार बार कुछ मांगता है, कहता है, तो पिता को यह अनुभूति होता है कि यह मेरा संतान है या मेरे ऊपर निर्भर है, तभी तो बार बार मांग रहा है। वही स्थिति हम लोगों की है कि अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं, तो गुरु की कृपा, साधु की कृपा और भगवान की कृपा मांगना चाहिए। इसीलिए तो प्रार्थना भरा हुआ है भागवत के अंदर। प्रार्थना का अर्थ ही है कि हम कुछ याचना करते हैं भगवान से, कुछ विनती करते हैं, भले अपनी चाटुकारिता दिखलाते हैं, अपनी चतुरता के आधार पर हम प्रत्यक्ष शब्दों में नहीं मांगते, लेकिन उसके अंदर अर्थ तो, गुह्य रहस्य तो छिपा रहता है कि कुछ चाहना है, कुछ इच्छा है। मांगे तो भगवान से मांगो। इसीलिए तो भागवत के अंदर कहा गया, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तिब्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष पर। चाहे जो ही स्थिति मांगना है मांगो भगवान से, लेकिन भगवान विचार करके देंगे। केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं, यही उनका श्रेष्ठता है। आनुकुल्यन कृष्णानुशीलनम, वे स्वेच्छा से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव ने भृत्या नाम शब्द का व्यवहार करके यह संकेत किया है कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता तथा श्रेष्ठता का यह आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है वे सभी यशस्वी हैं। यहां भृत्य और भृत्या नाम शब्द का व्यवहार करते हुए इसका क्या अर्थ है? भृत और भृत्या नाम, भृत मतलब क्या आता है? नौकर। और उन्हीं नौकरों में से भृत्या नाम बहुवचन आ गया है, कि उन्हीं भक्तों में से यह एक आदर्श स्थापित करके गया चित्रकेतु कि हे पार्वती, आपने श्राप दिया और उस श्राप के बदले में श्राप न दे करके उसको सहर्ष स्वीकार करके और निर्भय होकर के चल दिया। यह है निडरता की स्थिति, क्योंकि उसे भरोसा है कि मैंने जो अपना कृत्य किया, कि भगवान शिव पर आक्षेप किया, उसका यह फल था कि मुझे आशीर्वाद के रूप में यह श्राप मिला, और निडर होकर के उस श्राप से डरा नहीं और वो चल दिए। दूसरा कोई होता तो दांत गिड़गिड़ाता, चरण में लौटता कि नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अपनी स्थिति को चित्रकेतु जी समझते थे कि सिद्धांत हमने बोल दिया वो स्थिति सही नहीं थी, लेकिन मुझे बदले में श्राप भी मिला तो मुझे डर नहीं है, इससे हमारी और एकाकी भक्ति बढ़ेगी, और निडर होकर के विचरण किए। उस शब्द को भृत्या और भृत्या नाम के संकेत करते हुए, सहिष्णुता का संकेत करते हुए, भक्त की स्थिति को दिखाते हुए चित्रकेतु महाराज ने अपना स्वभाव यहां दिखाया, और उसी का वर्णन यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य के अंदर। वे सभी यशस्वी हैं, उन्हें तनिक भी इच्छा नहीं है कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने और मुक्त होकर परम तेजोमय ब्रह्म से एकाकार हो ले। ऐसे लाभ उनको नहीं भाते, वे तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते रहते हैं। कहीं भी रहने की एक इच्छा मन में जरूर रहना चाहिए कि हम कहीं भी रहें, जत्तो तमसलोक, जत्तो तमसलोक गुणान वर्णने, एक श्लोक आया है भागवत के अंदर, या वृत्रासुर भी एक स्तुति में उन्होंने कहा है कि जत्तो तमसलोक गुणान वर्णने, नहीं मम्मो तमसलोक श्लोक है, जिसमें यह बताया गया है कि एक इच्छा उन्होंने वृत्रासुर के रूप में भगवान से व्यक्त किया कि ये भगवान मेरी एक इच्छा जरूर है कि मुझे ऐसे घर में जन्म देना जहां आपके भक्ति करने की अनुकूल परिस्थितियां हों, प्रतिकूल नहीं, अर्थात मुझे भक्त के परिवार में जन्म देना। और तुरंत उस लाइन के बाद निचले लाइन में उन्होंने कहते हैं कि मुझे वैसे परिवार में जन्म नहीं देना जिनकी बुद्धि देहाद, देहज, धन संपत्ति और संसार को प्राप्त करने में लगा हो, उनकी संगति मुझे नहीं देनी। इस प्रकार की अगर हम भावना या इस प्रकार का प्रार्थना करते हैं तो भगवान वह स्थिति हमको दे देते हैं, क्योंकि प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे। निहटता के साथ, हठिलता के साथ हम निठल्ले बैठे रहेंगे, इस जिह्वा को हिलाएंगे नहीं, उनसे कुछ कहेंगे नहीं, आंख बंद करके उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो हमारी यह भक्ति उत्कृष्ट नहीं मानी जाएगी। क्योंकि भगवान ने जिह्वा दिया, हाथ दिया, पैर दिया, शरीर दिया, तो सब तरह से अपनी सेवा में लेने के लिए, न कि संसारिक स्थिति को प्राप्त करने में अथक प्रयास करें और भगवान के सामने आकर के आंख बंद करके खड़े हो जाए। इस जीवा से हम कुछ कहे नहीं, अपनी मना स्थिति को भगवान के सामने व्यक्त करो, जानते हैं सर्वज्ञ हैं, फिर भी तुम्हें अपनी इस जीवा को शुद्ध करने के लिए कहना पड़ेगा, और कहने से ही हमारी जीवा शुद्ध होगी। एक जगह एक नीतिकार श्लोक में लिखा है, नीतिकार ने नीति श्लोक के अंदर, कि अगर हम कुछ ज्ञान हासिल कर लें तो उसको हम एक पैकेट की तरह पैक करके उस ज्ञान को अपने हृदय में ही ना रखें, उसका प्रचार करने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। वैसे ही अगर भक्ति, हम भक्ति के पथ पर चल रहे हैं और भक्ति के कुछ ज्ञान हमारे अंदर हैं तो हम उसको व्यक्त करने का प्रयास करें, तभी हमारी जिह्वा, हमारा मन, हमारा शरीर और हमारे गुरु के आदेश, सारे ये सब स्थितियां एक पथ पर चलेंगी और हम अपने जीवन के अर्थ सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम लोगों की स्थिति यह है कि नारायण परा बनने के लिए इन कथाओं को पढ़ करके और अपने को इस कसौटी पर कसने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग दृढ़ता के साथ अपने ऊपर इस सिद्धांत को लागू नहीं करने का प्रयास करते तब तक हमारी दृढ़ मति नहीं होगी भगवान के अंदर, तब हम अपने को निडर बनाने के लिए इन साधनों को अपने जीवन में लागू करके और इस पथ पर चलेंगे तो हम पक्के हो सकते हैं। तुल्य अर्थ दर्शिना का अर्थ ही वास्तव में यही है कि हमारी अर्थ सिद्धि केवल भगवत प्राप्ति में है और किसी में नहीं। जीवन का उद्देश्य, इस मनुष्य जीवन का खास करके उद्देश्य एक ही है, इसका वर्णन प्रथम स्कंद के अंदर ही बता दिया गया है कि सवय पुंसम परो धर्म, केवल भगवान की अधोक्षक की भक्ति करना ही सभी पुरुषों का एकमात्र कर्म है, कर्तव्य है। यतोर भक्तिर अधोक्षजे। और कोई उद्देश्य इस जीवन का नहीं है, लेकिन इस उद्देश्य की फलश्रुति तब पूरी होती है जब गुरु के आदेशानुसार इन पथ पर चल करके कुछ हासिल करने की दृढ़ मति अपने हृदय निश्चित करें। अब आप सोचिए कि वो साधु कैसे हैं, वो भक्त कैसे हैं, जिनका जिनके गुणों का गुणगान स्वयं भगवान शिव करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, नारद जी करते हैं, सनत कुमार करते हैं, भृगु मुनि करते हैं, उनकी स्थिति कितनी ऊंची है। इसलिए भगवान अपनी कटघरी या अपने बगल के कुर्सी को देते हैं अपने भक्तों को। कभी कभी अपने ऊंचे स्थान से खुद स्वयं भगवान उतर जाते हैं और भक्तों को वहां बिठाना चाहते हैं, लेकिन भक्त की योग्यता है कि वह बैठना नहीं चाहता उस आसन पे। लेकिन भगवान सदा अपने भक्तों को उच्च स्थान देते हैं केवल शरणागति के आधार। और इन कथाओं से हम लोग यही हासिल कर सकते हैं कि चाहे हम जिस परिस्थिति में हैं, लेकिन हमें एक ही आशा करनी चाहिए हे भगवान, और एक ही प्रार्थना करनी चाहिए गुरु से और वैष्णव से कि हे भगवान मेरी दृढ़ मति आपके चरणों में लगी रहे। हमारी बुद्धि हमारी जो विभ्रमित है संसार में जत्र तत्र विचरण करती है, उस बुद्धि को आप ठिकाने पर लगाइए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी मति आपके चरणों में लगी रहे और इस संसार में मैं निर्भय होकर के विचरण करूं कि भगवान की माया शक्ति भी मुझे विचलित नहीं करेगी, क्योंकि मेरी दृढ़ मति अगर आपके चरणों में लगी रहेगी तो आप अपने चरण में हमको ले लेंगे। और कुछ कराना भी चाहते हैं भगवान तो आपने लीला अपनी लीला का विस्तार कराना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की निर्भयता से हम विचरण करेंगे। आइए हम सब मिल करके श्री राधा राधिका रमण के चरणों में प्रार्थना करें कि जिस प्रकार की मति हमारी अभी है कथा में बैठी हुई स्थिति है, वही हमारी जीवन पर्यंत यही हमारी स्थिति बनी रहे। यह नहीं कि यहां हम सुन रहे हैं, सुनने के बाद यह चीज यही छोड़ दिए, कहीं भी रहे यह स्थिति हमारी बनी रहे। और इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे गुरु से, भगवान से, भागवत से, भक्त से, तो अवश्य हमको वह स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए भागवत को ग्रंथराज कहा गया है, यह सब कुछ दे सकता है लेकिन प्रार्थना करने की जरूरत है, इनसे कुछ कहने की जरूरत है, कहना तो पड़ेगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा अकेले में भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। अगर ठीक नहीं होती, अगर उन ऋषियों के दिमाग से अगर वो ठीक बात नहीं होती तो वो लोग भी कुछ कह दिए होते, लेकिन शिव जी की वास्तविक स्थिति को ये लोग जानते थे कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की विकार नहीं आ सकती है, इसलिए वो अपनी योग्यता को तो प्रचार हालांकि नहीं कर रहे थे, लेकिन दूसरे को यह भी सिखाना चाहते थे अपने व्यवहार से कि दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे अलावा। और चित्रकेतु महाराज खास करके अपने स्थान पर वो भी अच्छे थे कि उन्होंने उस समय उन्होंने रोका, उनको कहा कि शायद शिव जी की स्थिति को चित्रकेतु जानते थे कि वो तो अजितेंद्रिय हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता, लेकिन शायद अगर इस सभा में इतने ऋषि मुनि बैठे हैं, अगर ऐसा ये लोग करना ऐसा शुरू करें या और कोई आने वाले भविष्य भक्त अगर ऐसा करें तो उसकी स्थिति सही नहीं रहेगी, इसलिए उनको उनको कहना जरूरी था। क्योंकि शासक थे, राजा थे, तो उपास हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद महाराज की मंत्रा श्रीमद भागवतम की उपस्थित भक्तवृंद की गौर हरि प्रभानंदे हरि हरि बोल।